रोम दृष्टि स्थापित करता है।
क्रमांक 3,
संयुक्त राज्य अमेरिका और भविष्यदर्शी दर्शन, बाइबल के गहन अध्ययन और समझ के लिए आह्वान।
पिछले दो लेखों में उस निजी व्याख्या पर चर्चा करते हुए जो ये दावा करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को दानियेल अध्याय 11 पद 14 में दर्शन को स्थापित करने वाले 13 लोगों के लुटेरों के रूप में प्रतिरूपित किया गया है, हमने एलन वाइट के लेखन से एक उद्धरण दिया था जिसमें कहा गया है, कलीसिया के सदस्य व्यक्तिगत रूप से परखे और सिद्ध किए जाएंगे। वो परखने, जांचने और छनाई की प्रक्रिया जिसे मलाकी अध्याय 3 में वाचा के दूत द्वारा चांदी और सोने को शुद्ध करने के रूप में दर्शाया गया है, अब चल रही है। मलाकी अध्याय 3 में एक शुद्धिकरण को चिन्हित किया गया है,
और वो चांदी को गम लाने वाले और शुद्ध करने वाले के समान बैठेगा, और वो लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और उन्हें सोने और चांदी की तरह परिष्कृत करेगा ताकि वे धार्मिकता में प्रभु के लिए भेंट चढ़ाए। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट प्रभु को प्रिय लगेगी, जैसे प्राचीन दिनों में और पुराने वर्षों में हुआ करती थी। मलाकी 3:3-4।
जो लोग इस विचार को मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका वो प्रतीक है जो दर्शन को स्थापित करता है, वे ये समझ नहीं पाए हैं या समझना नहीं चाहते कि जुलाई 2023 में जिसकी मुहर खोली गई वो संदेश ही 144,000 में शामिल होने के उम्मीदवारों का शुद्धिकरण करता है। कफरनहूम के आराधनालय में 144,000 के अंतिम शुद्धिकरण का प्रतिरूप दिखाया गया था।
यीशु ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, और जोड़ा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि उसे मेरे पिता की ओर से न दिया जाए। वो चाहता था कि वे समझें कि यदि वे उसकी ओर खींचे नहीं जाते तो इसका कारण ये था कि उनके हृदय पवित्र आत्मा के लिए खुले नहीं थे। प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता हैं, और वो उन्हें जान भी नहीं सकता क्योंकि वे आत्मिक रीति से परखी जाती हैं। 1 कुरिन्थियों 2:2। विश्वास के द्वारा ही आत्मा यीशु की महिमा को देखती है। ये महिमा छिपी रहती है जब तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा में विश्वास प्रज्वलित न हो जाए। अपने अविश्वास पर सार्वजनिक फटकार के कारण ये शिष्य यीशु से और भी अधिक दूर हो गए। वे अत्यंत अप्रसन्न हुए और उद्धारकर्ता को चोट पहुंचाने तथा फरीसियों की दुर्भावना को संतुष्ट करने की इच्छा से उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया और उन्हें तिरस्कार पूर्वक छोड़ दिया। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया था, आत्मा के बिना केवल रूप, दाने के बिना केवल भूसी को स्वीकार कर लिया था। उनका निर्णय फिर कभी नहीं बदला क्योंकि वे फिर कभी यीशु के साथ नहीं चले।
जिसका पंखा उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान को भली भांति शुद्ध करेगा और अपने गेहूं को कोठार में इकट्ठा करेगा। मत्ती 3:12। ये शुद्धिकरण के समयों में से एक था। सत्य के वचनों द्वारा भूसा गेहूं से अलग किया जा रहा था क्योंकि वे ताड़ना ग्रहण करने के लिए अत्यधिक घमंडी और आत्मधर्मी थे और दीनता का जीवन स्वीकार करने के लिए अत्यधिक संसार प्रेमी। बहुतों ने यीशु से मुंह मोड़ लिया। बहुत से लोग आज भी यही कर रहे हैं। आत्माएं आज भी उसी तरह परखी जाती हैं जैसे कफरनहूम की आराधनालय में वे शिष्य परखे गए थे। जब सत्य हृदय में घर कर जाता है तब वे देखते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। वे अपने भीतर पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता देखते हैं, पर वे आत्मत्याग के कार्य को अपनाने के इच्छुक नहीं होते। इसलिए जब उनके पाप प्रकट होते हैं तो वे क्रोधित हो उठते हैं। वे ठेस खाकर चले जाते हैं। जैसे शिष्य भी यीशु को छोड़कर बड़बड़ाते हुए कहते गए, ये वचन कठिन है, इसे कौन सुन सकता है। द डिजायर ऑफ एजेस 329।
सत्य के वचनों द्वारा 144,000 की अंतिम मंदिर शुद्धि के विषय में मलाकी के दृष्टांत में वर्णित सोना और चांदी का प्रतिनिधित्व किया गया था।
देखो, मैं अपना दूत भेजूंगा और वो मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा, और जिस प्रभु को तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आएगा, अर्थात उस वाचा के दूत को जिसमें तुम प्रसन्न होते हो। देखो, वो आएगा, ऐसा सेनाओं का प्रभु कहता है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो प्रकट होगा तो कौन ठहर सकेगा, क्योंकि वो गलाने वाले की आग के समान और धोबी के साबुन के समान है।
मलाकी 3:1-2।
सभी भविष्यद्वक्ता, जिनमें मलाकी भी शामिल है, अंतिम दिनों की ओर संकेत करते हैं। इन लेखों में से पहले में हमने द 1888 मटेरियल्स पृष्ठ 432 से उद्धृत किया, जहां हमें बताया गया है, जो व्यक्ति अपने वर्तमान अपूर्ण शास्त्र ज्ञान से संतुष्ट होकर ये सोचता है कि यही उसके उद्धार के लिए पर्याप्त है, वो घातक धोखे में पड़ा हुआ है। बहुत से लोग शास्त्राधारित तर्कों से भली भांति सुसज्जित नहीं है ताकि वे त्रुटि को परख सके और उन सभी परंपराओं तथा अंधविश्वासों का खंडन कर सके जिन्हें सत्य के रूप में थोप दिया गया है। उसी अनुच्छेद में जिनकी पहचान की गई है वे गंभीर बाइबल के विद्यार्थी नहीं है, जिन्होंने वहां जहां मतभेद विद्यमान है उन शास्त्र के पदों का उद्देश्यपूर्ण अध्ययन नहीं किया है। जिनसे कहा जा रहा है वे अपनी आत्माओं के लिए उसकी मज्जा और चिकनाई को ग्रहण करने ताकि बाइबल नहीं पढ़ते। उन्हें ये अनुभव नहीं होता कि ये परमेश्वर की वाणी उनसे बोल रही है। परंतु यदि हम उद्धार का मार्ग समझना चाहें, यदि हम धर्म के सूर्य की किरणें देखना चाहें, तो उन्हें उद्देश्यपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पहले लेख ने ये पहचाना कि उनके भ्रमित भविष्यवाणी संबंधी मॉडल के घटकों में से एक द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी का वो अंश है जिसमें ये दर्ज है। पुरानी दुनिया में रोमनवाद और नई दुनिया में पतित प्रोटेस्टेंटवाद उन लोगों के प्रति जो सभी दिव्य आज्ञाओं का सम्मान करते हैं एक जैसा रुख अपनाएंगे। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 715। उनकी निजी व्याख्या का दावा है कि ये वाक्य रोमनवाद को अतीत का इतिहास और पतित प्रोटेस्टेंटवाद को आधुनिक दुनिया के रूप में पहचानता है। व्याकरणिक साक्ष्य से ये सिद्ध हो जाने के बाद कि इस वाक्य का जो अनुप्रयोग वे करते हैं वो उसके सही अर्थ से तोड़ मरोड़ कर निकाला गया है, उन्होंने उस गलत अनुप्रयोग को सार्वजनिक रूप से वापस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इसी अंश का उपयोग अपनी अगली जूम बैठक का विज्ञापन करने के लिए किया। फिर भी हमें बताया गया है कि हमें बूर सबके मन में ये आवश्यकता दृढ़ता से बैठानी चाहिए कि वे दिव्य सत्य की लगन से खोज करें ताकि वे जाने कि वे सचमुच जानते हैं कि सत्य क्या है। झूठे दावे को वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जो इस बात का प्रमाण प्रतीत होता है कि इस गलत अनुप्रयोग को बढ़ावा देने वाले सत्य क्या है ये जानने के लिए लगन से खोज नहीं कर रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत से ही हमने इसे इस प्रकार लिया है कि ये केवल इस बात पर सत्य और असत्य के बीच का मतभेद भर नहीं है कि तेरी प्रजा के लुटेरे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं आज भी उसी मत पर कायम हूँ। दानियल की पुस्तक पर लिखे लेख संख्या 200 तक आते आते ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि दानियल की 11 के पद 13-15 का महत्व ठोस रूप से प्रतिपादित किया जा चुका था। ये पद 1989 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार कानून तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उल्लेख दानियल 11 के पद 40 में है। हम उस इतिहास की पहचान पद 40 के छिपे हुए इतिहास के रूप में करते आए हैं। हमने ये भी पहचाना है कि जब सिस्टर व्हाइट कहती हैं जो पुस्तक मुहर बंद की गई थी वो प्रकाशित वाक्य नहीं, बल्कि दानियल की उस भविष्यवाणी का वो भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है, तब दानियल अध्याय 11 के पद 40 का छिपा इतिहास ही दानियल की भविष्यवाणी का वो भाग है। पद 13:15-15 तक उस भविष्य सूचक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी मुहर अंतिम दिनों में खोली जाती है। अतः ये तीनों पद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य और 7 गर्जनाएं दोनों के रूप में भी दर्शाए गए हैं, जिसकी मुहर परिवीक्षा की समाप्ति से ठीक पहले खोली जाती है। जब सिस्टर व्हाइट दानियल की पुस्तक के उस भाग का उल्लेख करती हैं, तो जिस अंश में ये कथन स्थित है उसमें लिखा है,
कोई ये न सोचे कि क्योंकि वे प्रकाशित वाक्य के प्रत्येक प्रतीक का अर्थ नहीं समझा सकते, इसलिए उसमें निहित सत्य का अर्थ जानने के प्रयास में इस पुस्तक की खोज करना उनके लिए व्यर्थ है। जिसने ये रहस्य यूहन्ना पर प्रकट किए वो सत्य के परिश्रमी खोजी को स्वर्गीय बातों का पूर्व स्वाद देगा। जिनके हृदय सत्य को ग्रहण करने के लिए खुले हैं वे उसकी शिक्षाओं को समझने में समर्थ किए जाएंगे, और उन्हें वो आशीष दी जाएगी जो उन लोगों से प्रतिज्ञा की गई है जो इस भविष्यवाणी के वचन सुनते हैं और उसमें लिखी बातों का पालन करते हैं। प्रकाशित वाक्य में बाइबल की सभी पुस्तकों का मिलन और समापन होता है। यहाँ दानियेल की पुस्तक का पूरक भाग मिलता है। एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकाशना। जो पुस्तक मुहर बंद की गई थी वो प्रकाशित वाक्य नहीं है, बल्कि दानियेल की भविष्यवाणी का वो भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है। स्वर्गदूत ने आज्ञा दी, परंतु हे दानियेल, इन वचनों को बंद कर और पुस्तक पर मुहर लगा दे अंत समय तक। दानियेल 12:4। प्रेरितों के काम 550-585।
शब्द कंप्लीमेंट का अर्थ है पूर्णता तक ले जाना। दानियेल की पुस्तक का वो भाग जो अंतिम दिनों से संबंधित है, जिसकी मुहर अंत के समय पर खोली जाती है, वो तब पूर्ण हो जाता है जब उसे पंक्ति दर पंक्ति यीशु मसीह का प्रकाशन और सात गर्जनाएं के साथ मिलाकर देखा जाता है। ये तीनों निरूपण वही संदेश हैं जिनकी मुहर खोली जाती है और इसलिए सत्य के वचन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें मलाकी में वर्णित अंतिम मंदिर शुद्धि में 144,000 को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि दानियेल 11 के पद 13-15 में दर्शाया गया है। बीच का पद वही है जहां वर्तमान विवाद का चित्रण है और इस प्रकार वो उसी विवाद का प्रतिनिधित्व करता है जिसका सामना मिलराइटो ने अपनी भविष्यवाणी संबंधी इतिहास में किया था। पद 14 के ते रे लोगों के लुटेरे को संयुक्त राज्य अमेरिका बताना ठीक उसी के समानांतर है जैसे मिलियराइट इतिहास के प्रोटेस्टेंट ये दावा करते थे कि वे लुटेरे अंतियोकस एपिफानेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विवाद सोने और चांदी से अपशिष्ट को निकालकर उन्हें शुद्ध करेगा, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि इस विवाद के माध्यम से मलाकी अध्याय 3 के लेवियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए लोग परमेश्वर के भविष्य सूचक वचन का पहले से कहीं अधिक गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए हैं। विलियम मिलर के स्वप्न का धूल झाड़ू वाला मनुष्य अब कमरे से नकली सिक्कों और रत्नों को बुहार रहा है ताकि अपने उस कार्य से पहले जिसमें वो असली रत्नों को पुनः एकत्र करके ऐसे परिपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करेगा जो सूर्य को से 10 गुना अधिक चमकता है, उसी कार्य को पूरा करने के लिए उस विवाद को होने दिया गया, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को जागृत करेगा। यदि अन्य साधन विफल हो जाए तो विधर्म उनके बीच आएंगे जो उन्हें छानेंगे, भूसे को गेहूं से अलग कर देंगे। प्रभु अपने वचन पर विश्वास करने वाले सबको नींद से जागने के लिए बुलाता है। अनमोल प्रकाश आ चुका है जो इस समय के लिए उपयुक्त है। ये बाइबल का सत्य है जो उन संकटों को प्रकट करता है जो ठीक हम पर आ पहुंचे हैं। ये प्रकाश हमें पवित्र शास्त्रों का गंभीर और परिश्रमी अध्ययन करने तथा जिन मतों को विघ्न हम मानते हैं उनका अत्यंत आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि सत्य के सभी पहलू और स्थापनाएं प्रार्थना और उपवास के साथ पूरी तरह और लगनपूर्वक खंगाले जाएं। विश्वासियों को सत्य क्या है इस विषय में केवल अनुमानों और अस्पष्ट धारणाओं पर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। वो विधर्म जिन्हें वो अपने सोए हुए संतों को जगाने के लिए अनुमति देता है और उपयोग करता है, पुराने विवाद है।
इतिहास और भविष्यवाणी में परमेश्वर का वचन सत्य और त्रुटि के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का चित्रण करता है। वो संघर्ष अभी भी जारी है। जो बातें हो चुकी हैं वे फिर दोहराई जाएंगी, पुराने विवाद पुनर्जीवित होंगे और नए सिद्धांत लगातार उभरते रहेंगे, परंतु परमेश्वर के लोग जिन्होंने अपनी आस्था और भविष्यवाणी की पूर्ति में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूतों के संदेशों की घोषणा में भाग लिया है, जानते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं। उनके पास उत्तम सोने से भी अधिक मूल्यवान अनुभव है। उन्हें चट्टान के समान दृढ़ बने रहना है, अपने विश्वास के आरंभ को अंत तक दृढ़ता से थामे हुए। चयनित संदेश पुस्तक 2:109।
तेरे लोगों के लुटेरे को लेकर जो विवाद है वो मिलराइट इतिहास से उत्पन्न एक पुराना विवाद है, और वही मिलराइट इतिहास उनके विश्वास की शुरुआत है जिसे उन्हें अंत तक दृढ़ थामे रखने को कहा गया है। 144,000 के विश्वास की शुरुआत वे आधारभूत सत्य हैं जो 1843 और 1850 के अग्रणी चार्टों पर दर्शाए गए हैं।
शत्रु हमारे भाइयों और बहनों के मनों को इन अंतिम दिनों में डटे रहने के लिए एक प्रजा को तैयार करने के कार्य से भटकाने का प्रयास कर रहा है। उसके कुतर्क इस प्रकार रचे गए हैं कि मनों को समय के संकटों और कर्तव्यों से दूर ले जाएं। वे उस प्रकाश को कुछ नहीं आंकते जिसे मसीह अपने लोगों के लिए यूहन्ना को देने स्वर्ग से जाए थे। वे सिखाते हैं कि हमारे सामने ही आने वाली घटनाएं विशेष ध्यान पाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे स्वर्गीय मूल की सच्चाई को निष्फल कर देते हैं और परमेश्वर के लोगों को उनके पूर्व अनुभव से वंचित कर देते हैं, उसके स्थान पर उन्हें मिथ्या विज्ञान दे देते हैं।
प्रभु यूं कहता है, मार्गों पर खड़े रहो और देखो, और पुराने मार्गों के विषय में पूछो कि भला मार्ग कहाँ है, और उसी पर चलो। कोई भी हमारे विश्वास की नींवों को उखाड़ फेंकने का प्रयास न करे। वे नींवें जो हमारे कार्य के आरंभ में वचन का प्रार्थना पूर्वक अध्ययन तथा प्रकाशना के द्वारा रखी गई थी, इन्हीं नींवों पर हम पिछले 50 वर्षों से निर्माण करते आ रहे हैं। लोग ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई नया मार्ग खोज लिया है, और ये कि वे जो नींव रखी जा चुकी हैं उससे भी अधिक सुदृढ़ नींव रख सकते हैं। परंतु ये एक बड़ा धोखा है। जो नींव रखी जा चुकी है उसके अतिरिक्त कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं रख सकता। अतीत में अनेक लोगों ने नई आस्था का निर्माण और नए सिद्धांतों की स्थापना का बीड़ा उठाया, परंतु उनकी इमारत कितने समय तक टिकी रही? वह शीघ्र ही ढह गई, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर नहीं थी। क्या प्रथम शिष्यों को मनुष्यों की बातों का सामना नहीं करना पड़ा? क्या उन्हें झूठे सिद्धांतों को सुनना नहीं पड़ा, और फिर सब कुछ कर लेने के बाद ये कहते हुए दृढ़ खड़े नहीं रहना पड़ा? जो नींव रखी जा चुकी है उसके सिवा मनुष्य कोई और नींव नहीं रख सकता। तो हमें अपने विश्वास की आरंभिक दृढ़ता को अंत तक दृढ़ात पड़ने कारण मैंने साप का ऐसा सापे का, परमेश्वर और मसीह ने इस प्रजा के पास सामर्थ्य पूर्ण आधार डाचाइए तो, जिन्होंने उन्हें संसार से सरकर बिंदु दर बिंदु वर्तमान सत्य के स्पष्ट प्रकाश में ले आए हैं। पवित्र अग्नि से स्पर्श किए गए होंठों से परमेश्वर के दासों ने संदेश का प्रचार किया है। दैवी वाणी ने प्रचारित सत्य की प्रामाणिकता पर अपनी मुहर लगा दी है। रिव्यू एंड हेराल्ड, 3 मार्च 1904।
यिर्मयाह के पुराने मार्ग हमारी कार्य की शुरुआत में रखी गई नींवें हैं। वे सत्य चट्टान पर स्थापित किए गए थे, और मिलराइट इतिहास में वे आधारभूत सत्य वही वर्तमान सत्य संदेश थे जो 1842, 1843 और 1844 में प्रचारित किया गया था।
मैंने जो वचन कहे हैं उन्हें स्वीकार करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। सियोन की प्राचीरों पर परमेश्वर के प्रहरी बनकर जो खड़े हैं वे ऐसे पुरुष हों जो लोगों के सामने आने वाले खतरों को देख सकें, ऐसे पुरुष जो सत्य और भ्रांति, धर्म और अधर्म के बीच भेद कर सकें। चेतावनी आ गई है। ऐसा कुछ भी भीतर आने नहीं दिया जाना चाहिए जो उस विश्वास की नींव को हिला दे जिस पर हम 1842, 1843 और 1854 में संदेश आने के बाद से निर्माण करते आ रहे हैं। मैं संदेश में था, और तब से परमेश्वर ने जो हमें प्रकाश दिया है उसके प्रति सच्चा रहते हुए मैं संसार के सामने खड़ा रहा हूँ। हमारा इरादा अपने पांव उस आधार भूमि से हटाने का नहीं है जिस पर वे तब रखे गए थे जब हम दिन प्रतिदिन गंभीर प्रार्थना के साथ प्रभु को खोजते हुए प्रकाश की तलाश कर रहे थे। क्या आप सोचते हैं कि मैं वो प्रकाश छोड़ सकता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है? वो युगों की चट्टान के समान है। जब से वो दिया गया है तब से वो मेरा मार्गदर्शन करता आया है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज जीवित है, राज्य करता है और कार्य करता है। उसका हाथ पहिए पर है, और अपने प्रबंध में वो अपनी ही इच्छा के अनुसार पहिया घुमा रहा है। लोग अपने आप को दस्तावेजों से ना बांधें ये कहते हुए कि वे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। वे अपने आप को स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर से बांधे, तब स्वर्ग का प्रकाश आत्मा मंदिर में चमकेगा और हम परमेश्वर का उद्धार देखेंगे। रिव्यू एंड हेराल्ड, 14 अप्रैल 1903।
जो संदेश 832, 833 और 834 चौरों में प्रचारित किया गया था वही संदेश 834 पाइनियर चार्ट पर दर्शाया गया है। मई 832 में 834 के 300 चार्ट मुद्रित किए गए। एलेन वाइट और पाइनियरों ने ये गवाही दी कि वो चार्ट हबकूक अध्याय 2 की इस आज्ञा की पूर्ति था कि दर्शन लिखो और उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट करो। उसी इतिहास में 300 मिलेराइट उपदेशक थे और एसडीए इतिहासकार इस तथ्य की गवाही देते हैं कि वे सभी 835 चार्ट का उपयोग करते थे। ऐसा क्या है जो किसी व्यक्ति को ये दावा करने के लिए प्रेरित करे कि चार्ट पर दर्शाई गई रोम की तेरी प्रजा के लुटेरे के रूप में अग्रणी पहचान गलत है? ऐसा क्या है जो किसी को वो दावा स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे? फिर भी ऐसा क्या है जो हम में से उन लोगों को, जो ये दावा करते हैं कि हम उस अग्रणी समझ को स्वीकार करते हैं कि तेरी प्रजा के लुटेरे वाली अभिव्यक्ति से रोम का प्रतीक किया गया है, वास्तव में स्वयं उस समझ का बचाव न कर पाने की स्थिति में डाल देता है? पहले लेख में हमने निम्नलिखित अंश उद्धृत किया था।
मनुष्य की बौद्धिक उन्नति चाहे कितनी भी क्यों न हो, उसे एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अधिक प्रकाश के लिए पवित्र शास्त्रों की गहन और निरंतर खोज की आवश्यकता नहीं है। एक समुदाय के रूप में हमें व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणी के विद्यार्थी बनने के लिए बुलाया गया है। हमें तत्परता के साथ जागते रहना चाहिए ताकि हम किसी भी प्रकाश की किरण को पहचान सकें जिसे परमेश्वर हमें प्रस्तुत करें। गवाहियां खंड 5, 700 अच्छापू।
मैं ये दावा करता हूँ कि वन जो परमेश्वर अब हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है कि हम दानियल अध्याय 11 की पहली 15 आयतों को व्यक्तिगत रूप से समझने कि अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हुए हैं, और ये कि हमने ये नहीं समझा है कि उसी अध्याय की 13वीं से 15वीं आयतें उन सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो 144,000 के अंतिम शुद्धिकरण और मुहरबंदी को पूर्ण करती हैं। यदि इसी इतिहास में कोई विधर्मी शिक्षाएं प्रविष्ट न कराई जाती तो ये इस बात का प्रमाण होता कि हम पूरी तरह जागृत हैं, परंतु ये विवाद इसके विपरीत सिद्ध करता है।
ये तथ्य कि परमेश्वर के लोगों के बीच कोई विवाद या हलचल नहीं है, इसे इस निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि वे स्वस्थ उपदेश को दृढ़ता से थामे हुए हैं। ये आशंका करने का कारण है कि वे सत्य और असत्य के बीच स्पष्ट भेद नहीं कर रहे हो सकते। जब पवित्र शास्त्रों की जांच पड़ताल से नए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, जब ऐसा कोई मतभेद उत्पन्न नहीं होता जो लोगों को ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास सत्य है स्वयं बाइबल का अनुसंधान करने के लिए प्रवृत्त करे, तब जैसे प्राचीन काल में था वैसे ही अब भी बहुत से लोग परंपरा से चिपके रहेंगे और ये जाने बिना ही कि वे किसकी उपासना कर रहे हैं उपासना करते रहेंगे। मानसाख या मथुराष्ट्र देवों के 6 शक्ति या नाचतों में वर्णन नए सत्य था। जब नए सत्य था वैसे ही अब भी बहुत से लोग परंपरा से चिपके रहेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को जागृत करेगा। यदि अन्य उपाय विफल हों तो उनके बीच विधर्मी शिक्षाएं प्रवेश करेंगी जो उन्हें छानकर भूसी को गेहूं से अलग कर देंगी। प्रभु अपने वचन पर विश्वास करने वाले सबको नींद से जाग उठने के लिए बुलाता है। बहुमूल्य प्रकाश आया है जो इस समय के लिए उपयुक्त है। ये बाइबल का सत्य है जो हमारे सामने उपस्थित खतरों को दिखाता है। ये प्रकाश हमें पवित्र शास्त्र का परिश्रमी अध्ययन करने और जिन मतों को हम थामे हुए हैं उनका बुलक अत्यंत आलोचनात्मक परीक्षण करने की ओर उर्ले जाना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना और उपवास के साथ सत्य के सभी पहलुओं और बिंदुओं का पूरी तरह और धैर्यपूर्वक अन्वेषण किया जाए। विश्वासियों को सत्य के विषय में अनुमान और अस्पष्ट धारणाओं पर टिके नहीं रहना चाहिए। उनका विश्वास परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से स्थापित हो ताकि जब परीक्षा का समय आए और अपने विश्वास के लिए उन्हें परिषदों के सामने लाया जाए तो वे नम्रता और भय के साथ अपने भीतर की आशा का कारण बता सकें।
चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। जिन विषयों को हम संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं वे हमारे लिए एक जीवंत वास्तविकता होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि जिन सिद्धांतों को हम आस्था के मूल सिद्धांत मानते हैं उनकी रक्षा करते समय हम कभी भी ऐसे तर्कों का सहारा न लें जो पूर्णतः सुदृढ़ न हों। टेस्टिमोनीज खंड 5, 67।
परमेश्वर की प्रजा के लुटेरों पर इस विचार विमर्श में आगे बढ़ते हुए हम ये प्रदर्शित करेंगे कि दानियल 11 शब्द पर प्रोटेस्टेंटों और मिलेराइटों के बीच का विवाद सर्वथा उसी तर्क के समान है जो उस नई और निजी व्याख्या के संबंध में है कि दर्शन की स्थापना रोम नहीं बल्कि संयुक्त राज्य करता है। ये मत कि द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी अतीत के इतिहास को दर्शाने के लिए ओल्ड वर्ल्ड अभिव्यक्ति का प्रयोग करती है एक सपोजिशन एंड इल डिफाइंड आइडिया है, और ये एक आर्ग्यूमेंट that is not wholly sound का उदाहरण है। जिन लोगों ने उस खंड का उपयोग अपनी इस धारणा का समर्थन करने के लिए किया है कि तेरी प्रजा के लुटेरों के रूप में रोम की पहचान करने में मिलर राइट गलत थे, उन्हें अपना मसीही दायित्व निभाते हुए अपना दावा सार्वजनिक रूप से वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो व्याकरण और इतिहास दोनों की कसौटी पर नहीं टिकता। इस विवाद के हाशिए पर बैठे लोगों के लिए तुम पर ये जिम्मेदारी है कि तुम सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करो, क्योंकि तुम्हें बुलाया गया है कि तुम भविष्यद्वाणी के विद्यार्थी बनो, किसी मनुष्य के विचार के अनुयायी नहीं। लोग धर्म ग्रंथों को तो दड़ मरोड़कर अपना ही विनाश कर लेते हैं।
और ये समझो कि हमारे प्रभु का दीर्घ धैर्य उद्धार है, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उसे दी हुई बुद्धि के अनुसार तुम्हें लिखा है, और वो अपने सब पत्रों में भी इन बातों के विषय में लिखता है, जिनमें कुछ बातें समझने में कठिन हैं, जिन्हें अनपढ़ और अस्थिर लोग, जैसे वे अन्य शास्त्रों के साथ भी करते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं अपने ही नाश के लिए। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम पहले से इन बातों को जानते हो, सावधान रहो कि कहीं तुम भी दुष्टों की भूल में बहक कर अपनी स्थिरता से गिर न पड़ो। परंतु अनुग्रह में और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब और सदा सर्वदा हो, आमीन। 2 पतरस 3:52-18।
पीटर कहता है कि अज्ञानी और अस्थिर लोग ही धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ते हैं अपने ही विनाश के लिए। उस तथ्य के अनुरूप सिस्टर व्हाइट की यह बार बार की गई चेतावनी है कि हम स्वयं अध्ययन करें। यदि हम भविष्यवाणी के विद्यार्थी होने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने ही विनाश को सुनिश्चित कर रहे हैं। तुम्हारी प्रजा के लुटेरे ही दर्शन की स्थापना करते हैं, और सुलेमान ये बताता है कि जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं।
जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था का पालन करता है वो धन्य है। नीति वचन 29:85।
पेरिश की परिभाषाओं में से एक है निर्वस्त्र कर दिया जाना। जहां दर्शन की गलत समझ होती है वहां उसका आधार ये तथ्य होता है कि वो प्रतीक जो दर्शन को स्थापित करता है या तो समझा ही नहीं गया है या गलत समझा गया है। सुलेमान की चेतावनी में जो नष्ट होते हैं उनमें होना उस निर्वस्त्रता को सुनिश्चित करना है जिसे लोदीकिया वासियों द्वारा निरूपित किया गया है, जिन्हें प्रभु शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय अपने मुंह से उगल देगा। हम ऐसी धारणा क्यों स्वीकार करें जो बहन व्हाइट की पुराने और नए संसार के संबंध में की गई टिप्पणियों के स्पष्ट अर्थ को गलत प्रस्तुत करती है, और जो मिलराइटों की इस पहचान को अस्वीकार करती है कि दर्शन को स्थापित करने वाला रोम है, जिसे 1843 के चार्ट पर सीधे दर्शाया गया था, जो एडवेंटवाद की मूलभूत सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो मसीह है युगों की चट्टान, जिसे नींवों के सभी पवित्र चित्रणों द्वारा दर्शाया गया है।
परंतु परमेश्वर के वचन के अतिरिक्त किसी और नींव पर खड़ा किया गया हर भवन ढह जाएगा। जो कोई मसीह के समय के यहूदियों के समान मानवीय विचारों और मतों की नींव पर, मनुष्य द्वारा गढ़े गए रूप रिवाजों और अनुष्ठानों पर, या उन कर्मों पर जिन्हें वो मसीह के अनुग्रह से स्वतंत्र होकर कर सकता है, निर्माण करता है, वो अपने चरित्र की इमारत सरकती हुई रेत पर खड़ी कर रहा है। प्रलोभन के भीषण तूफान उस रेतीली नींव को बहा ले जाएंगे और उसके घर को समय के तटों पर खंडर बनाकर छोड़ देंगे।
इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं न्याय को डोरी और धर्म को सीसा ठहराऊंगा, और ओले झूठ के शरण स्थान को बहा ले जाएंगे और जल छिपने के स्थान को डुबा देंगे। यशाया 28:16-17।
पर आज दया पापी से विनती करती है, जैसा कि मैं जीवित हूँ प्रभु परमेश्वर कहता है, मुझे दुष्ट की मृत्यु में कोई प्रसन्नता नहीं है, बल्कि ये कि दुष्ट अपनी चाल से फिरकर जीवित रहे। लौट आओ अपनी बुरी चालों से, क्योंकि तुम क्यों मरोगे। यहेजकेल 33:11। आज जो वाणी पश्चाताप न करने वालों से बोलती है वो उसी की वाणी है जिसने अपने प्रेम के नगर को देखकर हृदय की पीड़ा में पुकार कर कहा, हे यरूशलेम, यरूशलेम, जो भविष्यद्वक्ताओं को मारता है और जो उसके पास भेजे गए लोगों को पत्थर मारता है, मैं कितनी बार चाहता था कि मैं तेरे बच्चों को ऐसे इकट्ठा कर लूं जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे जमा करती है, पर तुमने नहीं चाहा।
देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ दिया जाता है। लूका 13:3-13:3 तक आरवी यरूशलेम में यीशु ने उस संसार का प्रतीक देखा जिसने उसके अनुग्रह को अस्वीकार किया और तुच्छ जाना था। वो रो रहा था, हे हठीले हृदय तेरे लिए। जब पर्वत पर यीशु के आंसू बह रहे थे तब भी यरूशलेम अब भी पश्चाताप कर सकता था और अपने विनाश से बच सकता था। कुछ समय तक स्वर्ग का वरदान अब भी उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करता रहा। सो हे हृदय, तुझसे मसीह अब भी प्रेम भरी वाणी में बोल रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। अब वो स्वीकृत समय है, देखो अब उद्धार का दिन है। प्रकाशित वाक्य 3:20, 2 कुरिन्थियों 6:2।
जो अपनी आशा अपने ही ऊपर टिकाए हुए हो वे रेत पर निर्माण कर रहे हो, परंतु आसन्न विनाश से बच निकलने में अभी भी देर नहीं हुई है। तूफान टूट पड़े उससे पहले दृढ़ नींव की शरण लो। प्रभु परमेश्वर यों कहता है, देखो मैं सियोन में नींव के लिए एक पत्थर रखता हूँ, एक परखा हुआ पत्थर, बहुमूल्य कोने का पत्थर, दृढ़ नींव का। जो विश्वास करता है वो घबराहट में जल्दबाजी नहीं करेगा। मेरी ओर देखो और उद्धार पाओ, हे पृथ्वी के सब छोरों, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। निराश ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ दूंगा, हाँ मैं तेरी सहायता करूँगा, हाँ मैं अपनी धर्ममय दाहिनी भुजा से तुझे संभाले रहूँगा। तुम न तो लज्जित होगे न ही सदा सर्वदा भ्रमित। यशाया 36:16-45:4-10, 48:10 फरिवान सत्रन के आशीर्वाद के पर्वत से विचार, फरिवान से पंजाल से।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।